ಅಧ್ಯಾಯಂ ಶ್ರಭಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವೃಜಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತ ಶಿಶುಮದ್ ಹೆಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಲಭ ಶರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶುಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮಕಂಡ ರಾಧಾಕಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಜಯ ಬ್ರಜಮಿ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ನದೀಪಮಯಪುರಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಾಮಯಿ ಕೀ ಜಯ ಜಮುನಾಮಯಿ ಕೀ ಜಯ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಸಮಾವೇತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೌರಿ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೌರಿ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೌರಿ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಏನ್ ಶ್ರೀ ಗೌರ
ಓಂ
ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೆ ಸಾತವೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಗ್ಯಾರಾ ಅಧ್ಯಾಯ से लेकर पंद्रहवें अध्याय तक जो नारद मुनि की सूचना के अनुसार युधिष्ठिर महाराज वर्णाश्रम धर्म की महत्ता समझ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद की आखिरी इच्छा यही थी कि कृष्ण भावना की स्थापना तो हो चुकी है, उन्होंने काफी आपत्कालीन समय समझ करके अमेरिका में कृष्ण भावनामृत दाखिल कर दिया और उसके लिए जो जो आवश्यकता थी जैसे कि हरिनाम संकीर्तन और नाम की महिमा के अनुसार पुस्तकों की रचना करना, जैसे षड गोस्वामियों ने भी भगवान के नाम के बल पर आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, जीव गोस्वामी ने हरिनाम व्याकरण लिखा, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी ये हरिभक्ति विलास संपादन करने में काफी सहयोग दिया था, रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि इत्यादि बहुत सारे ऐसे भगवान के विरह में जो भगवान से मिलन से भी ज्यादा आनंद की अनुभूति हो सकती है उनका प्रचार किए। रूप गोस्वामी ने भी ललित माधव और विदग्ध माधव नाटक की रचना करके भी उन्होंने भगवान की अंतरंग लीलाएं समझने के लिए प्रयत्न किए। ये लोग गोस्वामी थे, गोस्वामियों ने भगवान नाम का बल इस ढंग से बहुत मजबूत बताकर अपने जीवन में जो प्रयोग किया और उसका नाम का बल का प्रचार जो आज हमें श्रील प्रभुपाद जी की वाणी द्वारा प्राप्त हो रहा है, और प्रभुपाद की यही इच्छा रही कि जन समाज ज्यादातर विषयाशक्त रहता है, तो विषयाशक्ति में वो अपना स्वधर्म भूल जाते हैं, वो अपना स्वधर्म भूल जाते हैं और इनको व्यवस्थित रूप से जन समाज में कैसे प्रस्तुत किया जाए। शास्त्र दैवी वर्णाश्रम धर्म की बात करता है और हम लोग जूठा जातिवाद का धर्म बना के बैठे हैं। कलयुग में जो व्यवस्था वैदिक व्यवस्था कहलाती थी उसका काफी प्रदूषित बनाने का ये कली का प्रचार होता है। तो कली के प्रचार से ये सारी जन व्यवस्था टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। एक कहावत है कि जब सांप जाता है तो अपनी छाप छोड़ जाता है, जिसे लिसोटा कहते हैं। धूली में यदि सांप जाता है तो सांप अपना चिन्ह छोड़ जाता है कि यहां से गया है। लेकिन कलयुग में तो सांप भी गए, लिसोटे भी गए। हमारे पास कोई मार्गदर्शन होना चाहिए, यानी कि हम पुराने जमाने के जो रीति रिवाजों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं। ये रीति रिवाजों पालते पालते भी हमें कोई उसका तात्पर्य नहीं मिलता। चाहे आप विद्यार्थी यानी कि ब्रह्मचारी अवस्था में हो, गृहस्थ अवस्था में हो, वानप्रस्थ अवस्था में हो या संन्यास की अवस्था में, सभी अपने अपने नियम बनाकर बैठे हैं जो शास्त्र में इतने नहीं बना, नहीं अब उसका नियम बनाकर बैठे। तो श्री प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि मैंने तो 50% काम पूरा कर दिया कृष्ण भावना की स्थापना करने के लिए और मंदिरों की आवश्यकता, हरि नाम संकीर्तन का फैलावा करने, और इतनी सारी किताबें छोड़ गए हमारे लिए, लेकिन उसमें सारी माहिती वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, और इनकी यही इच्छा रही कि 50% जो बाकी काम है वो मेरे शिष्य करें इन पर। तो जब हम समाज रचना में जुड़े हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज तो होना ही चाहिए, और अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार उसके धर्म का पालन करता रहता होना चाहिए, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन बताने वाला कौन होगा? तो श्रीमद् भागवत तो बताता, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये सारी बात बताते, फिर भी ना समझ होकर हम किस ढंग से जीते। अपनी संस्था में ब्रह्मचारी भी बहुत कम हो गए, ब्रह्मचारी बहुत कम हो गए। प्रभु जी ने कहा कि महाराज जी ये तो आदर्श गृहस्थाश्रम की बात हम ब्रह्मचारियों को भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा अवश्य, तब पता चला कि अगर क्या जिम्मेदारियां आ गए हैं, तो जो ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ करना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी ही रहना चाहता है तो उसके लिए बहुत एक सुसंगठित मनोबल तैयार हो जाता है कि ये है आगे, ये अपेक्षा की जाती है, ये अपेक्षा होनी चाहिए, तभी तो हमारी भक्ति फलेगी। तो जो जब गृहस्थ बनने की इच्छा कर रहा है तो उनके उसके प्रति क्या हम भावना बना के बैठेंगे, क्योंकि ये बड़ा होगा, उसका गृहस्थ जीवन बहुत सफल होगा। आशीर्वाद तो मांगने आते हैं, लेकिन साधु लोग ऐसे बड़े बड़े आयोजन, ये जो पंडाल प्रोग्राम या जो शादी का जो त्योहार मनाते हैं, और कहीं बाहर की इन्फ्लुएंस कितनी होती है उसमें, है चलो बड़ा कोई हॉल रखो, लाखों रुपया का हॉल होता है एक रात के लिए, और हाथी बैंड बाजा इत्यादि सब। जब 1983 की बात है, जब लुधियाना में शादी करवाई थी अपनी शिष्या की, अरे कितने पैसे खर्च किए, फिर भी इतनी बारिश आई कि सब सफाई हो गई, तो पैसे तो गए, तो सारा महोत्सव का भी जो जो भाव होना चाहिए रहा, तो क्या करें नसीब में, अरे भैया इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन करेगा, समाज में प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और जब दो प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि शादी करते तो बात ही छोड़ो, बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है। शादी कराने में, शादी करने में और करने में बाकी पॉलिटिक्स की कुछ हमारी जिंदगी भर पीछे पड़ती रहती है। तो ये सारा जो भौतिकवाद के कारण कलयुग में जिस तरह समझदारी का अभाव होने के कारण ये सारी परेशानी पैदा होती है, तो शास्त्र समझदारी देता है उसका क्या, वो हमें कितनी ढंग से लागू होता है वो भी तो जानना होता है। और यही बातें चारे चार आश्रमों के लिए है, ऐसे नहीं क्योंकि ये हम आदर्श गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो तीसरे जो तीन और आश्रम है ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास इनको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, ये इनकी बात है नहीं, बहुत आवश्यक है सबको जानना क्योंकि यही गृहस्थ वो सारी जिम्मेदारी आप लोगों के बीच छोड़ी रखी। यदि गृहस्थ नहीं होते तो कौन पालन करता ब्रह्मचारी का, कौन वानप्रस्थ का भी पालन कर सकता है, कौन सन्यासियों का भी पालन कर सकता है। तो जहां जिस ढंग की जिम्मेदारियां ये जिम्मेदारियां अदा करना ये भगवान कृष्ण के नाते से उत्तरदायित्व लेने बराबर होता है। हमें ये विरासत मिल गई है तो उत्तरदायित्व, अब जीव इच्छा करता है तभी तो काम आगे होता है, कौन कितना साहस उसमें उठाता है वही देखना होता है। कोई है मुछाला व्यक्ति जो अपना जीवन समर्थ करने के लिए गृहस्थ बनना चाहता है? बाहर के लोगों को पूछो तो कहते हैं अरे जैसे सबकी शादी होती है हमारी भी हो जाएगी, हम भी इसी रगड़ में पड़ेंगे। लेकिन रगड़ में सच में चटनी होती है, वो उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, वो रगड़ सहन करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हर एक आश्रमों के लिए ये सूचना आवश्यक होती है और एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण सबको एक ही प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। चार अध्याय, वैसे पांच है, पांच अध्यायों में उनका शीर्षक भी दिया गया है। सर्वप्रथम है पूर्ण समाज की व्यवस्था जो चातुर्वर्ण के आधार पर है, दूसरा है उसके चार आध्यात्मिक वृत्त पर काफी चर्चा हुई है, तीसरा है कि सभी अपने अपने आश्रमों में रहकर आश्रमों की व्यवस्था की पूर्णता पाना चाहता है, यहां की सिद्धि ब्रह्मचारी की सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, गृहस्थों की सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं। आजकल के गृहस्थों को पूछो भैया तूने क्या सिद्ध किया, तेरे पास कोई सिद्धि के लिए संकल्प था कि मैं गृहस्थ आश्रम में आकर कोई अपना जीवन कैसे सिद्ध कर सकता हूं, उसका कोई ख्याल था? शादी के पहले भी कोई नहीं बताता, जैसे आएगा वैसे देखे जाएगा, यानी कि बिल्कुल अनिश्चितता वाला उनका संकल्प होता है, यानी कि जैसी अनिश्चितता संकल्प में है उसका जीवन भी अनिश्चित बन जाता है, तो वो सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? और यदि कोई सिद्ध हुआ हो तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो सिद्ध होता है तो वो अपना व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, व्यवहार से कोई दिखावाबाजी नहीं होती लेकिन आदर्श उदाहरण बनकर हमारे समक्ष जब रहता है तो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है। और जो चौथा बताया गया है आदर्श पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, और इसमें भी सभी मनुष्यों के लिए जो उपदेश होता है उसका उपसंहार नारद मुनि करते हैं। इसमें
जो जो आश्रित लोग हैं, इन चार वर्णों पर आश्रित होते हैं, वो आश्रित लोग हैं, तो आश्रितों का भी इसमें किस ढंग से समावेश होता है, तो उनके लिए भी उपदेश दिया जाता है। तो ये समाज रचना भगवान ने स्वयं जब बनाई है, चातुर्वर्णम सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि विद्धि अकर्तारम अव्यय, ये चार वर्णों के कर्ता मैं हूं, चार आश्रम मैंने स्थापित किए हैं, चार वर्ण मैंने स्थापित किए हैं, क्योंकि ये समाज रचना में आवश्यक, और जो गुण और कर्म के अनुसार होता है, गुण और कर्म से हर एक मनुष्य का शरीर बंधा है, क्योंकि आत्मा जब शरीर में आता है तो वो जो जो इच्छा करता है तो उसी गुणों के प्रभाव में आता है, और गुणों के प्रभाव में आने के कारण उसका कर्तव्य जो बनता है, तो कई कर्तव्य तामसिक प्रकार के होते हैं, कई राजसिक प्रकार के होते हैं, कई सात्विक प्रकार के होते हैं। तो ये गुणों का प्रभाव भगवान को छूता, इसलिए भगवान का व्यक्तित्व हमेशा गुणातीत कहलाता, गुणों से परे है। मनुष्य छोटी जीवात्माएं गुणों के प्रभाव में बहुत आसानी से आती है, माया का बाया हाथ का खेल कहते हैं, माया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब जीव ईर्ष्यालु होकर अपना खुद का सोचने लगता है तो इतने बड़े विशाल विश्व में इसकी कोई गणना ही नहीं, तो आसानी से प्रभाव में आ जाता है, जिसे हम माया में पड़ा हुआ कहते हैं। तो सर्वप्रथम सूचना क्या होनी चाहिए, किसी को लागू हो, तो ये भगवान किस ढंग से ये गुणों वाली माया बनाते हैं, इनका प्रभाव डालते हैं, और ये माया के शिकंजे में पड़े रहने वाले की दशा क्या होती है, वो अपने आप की पहचान कराने में स्वयं असमर्थ बन जाता है, इतना गहरा प्रभाव माया का रहता है, इतना गहरा। तब हाँ, इस प्रभाव से छूटने का प्रयत्न करने के लिए भी सूचना दी जाती है, कौन आसानी से छूट सकता है, ब्रह्मचारी आसानी से छूट सकता है, गृहस्थी आसानी से छूट सकता है, वानप्रस्थ आसानी से छूट सकता है, और संन्यास से भी आसानी से छूट सकता है, कोई भी व्यक्ति आसानी से छूटने में समर्थ नहीं। यदि आसानी से छूटना हो तो अकलमंदी चाहिए, वो भगवान देते हैं, माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न जो सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो छूटना चाहता तो अव्यभिचारिणी भक्ति, पोल्यूशन बिना की भक्ति, किसी भी प्रकार का मानसिक यह चेतना का पोल्यूशन जिसमें नहीं है, वो विशुद्ध भक्ति का आचरण तीन गुणों के प्रभाव से छुड़वाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। अरे भाई, हम तो पड़े हैं कीचड़ में, और सफाई की बात करो, अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो सकेगी जब सफाई नहीं। ये संसार का कीचड़ कितना गंदा है, क्या इसके प्रभाव से ये चारे चार आश्रम छूटने में समर्थ नहीं, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं, फिर भी संभव ना, भगवान बनाते। तो व्यवस्थित रूप से इस पांचे अध्याय का अभ्यास आवश्यक है। इस अभ्यास से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है और हम बुद्धिमान बनकर निश्चयात्मक भाव ला सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसी मदद चाहिए, उस पर हमें निर्णय लेने की शक्ति मिल जाती है। इसीलिए आदर्श गृहस्थाश्रम की बातें बहुत व्यवस्थित भगवान ने बताई, नारद मुनि ने बताई। नारद मुनि तो सन्यासी था, आपको यूं लगता होगा कि के ओ गृहस्थी का उसको क्या परिचय, ये तो ब्रह्मचारी रहा। नहीं नहीं, अगले जन्म में क्या था, वो गंधर्व क्या नाम उसका, बरहन, उपबरहन, उपबरहन जो औरतों के साथ घूमता था, सही ना, और अपने गाने और स्वरूप पर काफी फिदा था, उसे गर्व चढ़ गया तो इंद्र के शाप द्वारा उसकी अकल ठिकाने आ गई। इंद्र ने शाप दिया था उसको, इंद्र जानता था, कह रहे यहां तू अपनी बड़ाई हांक रहा है, अपने सौंदर्य पर, अपने ये कंपनी जो रखी है औरतों की, इनके साथ तू मद में चढ़ गया, जिनके गुणगान गाने नहीं चाहिए उसका गुणगान गा रहा है, जिसके गुणगान गाने चाहिए उसका कुछ नहीं। तो सही जी, ये सारा समाप्त तो हो जाता जो तेरे मद का कारण। लेकिन वहां नारद मुनि को बहुत सारा मौका मिल गया दूसरे जन्म में, और भगवत प्राप्ति का उसने साधन बना दिया। तो ये नारद मुनि को पूर्वाश्रम का भी परिचय तो है, किसी न किसी ढंग से, कोई न कोई रीति से संसार के कीचड़ में जब आते हैं तो कीचड़ से अछूते रहना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कीचड़ पड़ा ही होगा, गहरा ऊपर से नहीं दिखाई देता हो तो अंदर से हो। तो ये संसार में जीव को मोह वशात रखना, माया में रखना, ये उसकी इच्छा का कारण है। तो जब हम समझते हैं कि ऐसी ही इच्छा हम विशुद्ध बनाकर अपनी धारणा के अनुसार जो निश्चयात्मक भाव भगवान के लिए बनाने की बात है, क्योंकि वो मूल संबंध पुनः स्थापित करता है, तो क्यों नहीं, ऐसी अकलमंदी तक ले जाने की हमें तक देते हैं, मौका देते हैं, तो ये भावना यदि हम समझदारी ला सकते हैं तो बहुत फायदा होता है। जब संसार में आए हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हमें जबरदस्ती से कर्म करने पड़ते हैं, अपनी इच्छा है और जबरदस्ती है, ये दोनों साथ साथ में हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं, इच्छा हमारी है लेकिन जबरदस्ती माया की पड़ रही है, और हम समझ रहे हैं कि हमारी इच्छा हम पूर्ण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। देहात्म भान से हम परतंत्र होते हुए भी हम स्वतंत्रता चाहते हैं कि नहीं, देश की स्वतंत्रता पाने के लिए जो जो गांधी जी ने प्रयत्न किए, तो क्या वो अध्यात्म की दृष्टि से किए थे या भौतिक दृष्टि से किए थे, क्यों मृत्यु के समय तक वही परिस्थिति बनी रही। प्रभुपाद जी ने जो कागज लिखा है उससे पता चलता है कि भगवान की शक्ति भगवद्गीता के अध्ययन द्वारा पाकर आपने भगवान पर अपना सारा जीवन न्योछावर नहीं किया बल्कि आपने देश पर, तो ये तो देहात्म बुद्धि होगी। आप निकलो महात्मा जी, इनमें से हटो और शेष जीवन सिर्फ भगवान की प्रति के लिए व्यतीत करो। ऐसा कहा, नहीं तो ये तो पॉलिटिक्स काफी पीछे पड़ी थी। इनकी अनिच्छा होते हुए भी देश के दो टुकड़े हुए। भौतिक दृष्टि से समानता हिंदू मुस्लिम में उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन आत्मा की समानता होते हुए भी भौतिक समानता पर ज्यादा जब भार देते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विघ्न देने वाला हो गया तो गोली के शिकार हो गए। जबकि प्रभुपाद की सारी सूचना अध्यात्म के आधार पर थी। इन्होंने ये सब पढ़के, भगवद्गीता इत्यादि पढ़के, इन्होंने सिर्फ भौतिकता के लिए ही इस्तेमाल किया, तो काफी भेद पड़ जाता है, हेतु सिद्ध नहीं होता। यानी कि जानते हुए भी इच्छा, तो इच्छा की स्वतंत्रता हमारी रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति जबरदस्ती करती है। इनके हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं था, तब तो ये दशा हुई। मनुष्य, हर एक मनुष्य कोई परतंत्र रहना नहीं चाहता। चलो दूसरा उदाहरण दें। जब प्रभुपाद जी सर्वप्रथम भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर महाराज को मिले, तब उस समय तो वो गांधी जी की मूवमेंट में थे ना, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सीधा प्रश्न पूछ लिया। हाँ, क्या पूछा था पता है?
जब तक हमारा देश गुलाम है, हमारी जो मेरा प्रचार कौन सुनेगा, भगवान का संदेश कौन सुनेगा?
हाँ, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या उत्तर दिया?
जो कृष्ण भक्ति है वो आजादी की, मतलब बेटी का,
यानी कि आत्मा जब तक देहात्म भाव में परतंत्र है तो देश की स्वतंत्रता मिलते भी क्या फायदा होगा। जब तक हम अपने अंदर ही परतंत्रता अनुभव करते हैं, तब देश को स्वतंत्र होते हुए हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज देश स्वतंत्र है, परतंत्र है? क्यों भैया, क्या हो गया आजादी को? कहां छूत मंत्र होकर चली गई? गुलामी तो भोगते हैं। जरा कुछ भी अपनी स्वतंत्रता से कुछ करने गए तो वो अमेरिका हुंकार देता है, एक खबरदार ये मत करो। क्या क्या पाबंदी, क्या कंट्रोल अपने पर थोपने के लिए प्रयत्न करते। लेकिन क्या अमेरिका स्वतंत्र है? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। बिन लादेन ने अमेरिका को परतंत्र बना दिया, अमेरिका की नींद हराम कर दी। जहां देखो वहां सुरक्षा का कोई प्रावधान करते हुए भी सुरक्षा नहीं पाते, इतने सारे सुरक्षा के प्रावधान करते हैं। एक मच्छर भी वो सुरक्षा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ऐसी ऐसी तरीके फिर भी गड़बड़ी होती है। कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है? तो ये परतंत्रता तो हमेशा माया की चंगाल में बनी ही रहती है, ये गुणों का प्रभाव है। यदि कोई इस ढंग से छूटना चाहता है, लेकिन गुणों के प्रभाव से कोई छूटता नहीं, जो छूटता है तो किस ढंग से, अव्यभिचारिणी भक्ति से ही छूट सकता है, नहीं तो नहीं। आइए हम कई चीजों पर दृष्टिपात करें जो हमें ये पर्वस्तः से हम अपनी इच्छा पूर्ण करने का जो प्रयत्न जिसे कार्य कहते हैं उस पर दृष्टिपात करें। भगवद गीता में कार्य की जो सारी बातें या क्रिया या कर्म, अब जो चाहे उसे समझने का यदि प्रयत्न करेंगे तो ये पता चलेगा कि कर्म भगवान की शक्ति द्वारा प्राप्त होता है, यानी कर पाते हैं। हम जब आए तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, पैदा हुए कुछ था, हवा पानी लेकर आए थे क्या खिसे में, तो भगवान ने सारी व्यवस्था बना रखी, तो वो व्यवस्था में हम उधारी करके आए हैं, लेते हैं, यानी कि उधार लेते हैं, वापस कुछ देते नहीं। जबकि हम देते हैं तो सारा प्रदूषित करते देते हैं, सही, क्योंकि पहला प्रदूषण अपनी इच्छा द्वारा पैदा होता है, वो भगवान से विरुद्ध इच्छा होने के कारण हमें ये दुनिया प्राप्त हुई है कि चलो जा, मेरे आध्यात्मिक सानिध्य में तुम रहने के लिए लायक नहीं बने क्योंकि मेरे से विरुद्ध इच्छा कर रहे हैं, तो वहां से हटकर मैं तेरे लिए ये जगह बना देता हूं। मेरी ही शक्ति है लेकिन वहां कोशिश कर तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं पिता हूं, मैं सारा प्रावधान कर देता हूं, सारा आयोजन कर देता हूं, और मैं साथ में रहूंगा, तुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि तू मुझे चाहता नहीं, लेकिन ये तो सब मेरा है, मैं पैदा कर रहा हूं, तू भी मेरा है, मेरे अलावा कोई दूसरा मालिक नहीं, तो मैं परमात्मा के रूप में तेरे हृदय में छिपा रहूंगा, तू क्या चाहता है उस पर मैं देखरेख रखूंगा, तुझे सब कुछ सारी सुविधाएं तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं देता भी रहूंगा, और यदि ये तो मेरी भावना है कि तू भयजनक स्थिति में आवे उसे पहले मैं तुझे वार्निंग भी देता हूं बिना मांगे, क्योंकि तुम मुझे चाहता नहीं है, तुमने बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करूंगा कि जिसके द्वारा तुझे वार्निंग मिल जाएगी, अकलमंदी कहां तक तू उपयोग कर सकता है उस पर ही तेरी सुरक्षा का आधार बनेगा। तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं, हम आते हैं, हम देख नहीं पाते और समझते हैं कि यही हमारी कर्म भूमि है, हम ही सुखी होंगे, अहम ईश्वर अहम अहम भोगी अहम बलवान सुखी, ये सब अहम अहम पर चलता है, पास में देखने वाला कौन है? भगवान की आज्ञा के अनुसार ये सारी भौतिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति के एक एक अंग भगवान के साक्षी बनकर आकर हम पर देखरेख रखते हैं। चलो एक चोर अपनी चोरी करने की इच्छा रखता है और चोरी करने के लिए वो सब पर नजर रखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, जब देखने वाला कोई नहीं है तो बहुत आसानी से कोई चोरी करके अपने आप को सफल मानता है। देखो बिना कमाए बिना पसीने की ये कमाई है, आराम से जिंदा रह सकते, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों दिखावे के लिए पहनते हैं, चलो मैं छीन लूंगा, अब पता ही नहीं चलेगा कि कैसे छीन ली हमारी कला। चोर अपनी कला पर बहुत आफरीन हो जाता है चोरी की। प्रभुपाद जी कहते उसे पता नहीं है कि ये 10 दिशाएं भी साक्षी होती है, उसे पता ही नहीं क्योंकि जो जो चीज है पैदा की है वो सभी साक्षी के रूप में, अन्य जीव भी जो चोर नहीं देख पाता वो भी साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में। आजकल का विज्ञान भी उसी दिशा में थोड़ा प्रगति करता है। यदि किसी ने किसी का खून किया हो और लाश कहीं जंगल में डाल गए, कुछ देखने वाला नहीं है, तो उसे पता नहीं कि एक मक्खी भी देख सकती है। जैसे खून बाहर निकलता है मक्खी को सुगंध आती है और सर्वप्रथम उसके आसपास घूमने लगती है। मक्खी है, चोर को परवाह नहीं, मक्खी क्या करेगी, लेकिन ये मक्खी तुरंत बैठकर अंडे डालेगी, वहां अंडे से दूसरी मक्खियां पैदा होगी। तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन में, यानी कि जो ये गुनेगार को पकड़ने के लिए इस ढंग की सारी तजवीज की जाती है, तो यहां भी मेडिकल कॉलेज में आप जाइए तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आप पता करोगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये मक्खी के इन अंडे जो होते हैं जिसमें से वो मैगट बनती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ककून बनता है, उसका छोटा सा रूप मक्खी के रूप में बाहर अंदर निकलता है, ये सारी जो जीवन क्रिया है उसको कितना समय लगता है उसके आधार पर ये कितने नंबर का मैगट है वो भी गिनती कर सकते हैं, और वो समय के आधार पर ये कब खून हुआ है उसका समय निकालते हैं। समय निकल बाद में ये व्यक्ति उस समय में कहां थी उसकी जांच पड़ताल करते हैं, किसकी साथ थी, तो जिसकी साथ कोई बताता है तो उस पर शक जाता है कि यदि इस समय में इन व्यक्तियां उनकी साथ थी तो चलो उसको पकड़ो, उलट तपास करो, ये करो वो करो, तब मक्खी इन चोरों को जो जो खूनी को पकड़वा लेगी। ये फॉरेंसिक मेडिसिन ने और ब्रह्म संहिता में तो ब्रह्मा जी कहते ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति शशि सतीजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्र गोविंद आदि पुरुषम तमाम। ये चंद्र सूर्य तो भगवान की आंख, लेकिन मूर्ख मनुष्य छोटा है, बुद्धि भी छोटी है, कहां समझ पाएगा। अपने आप में जो अपनी इच्छा से ही घेरा हुआ है वो कैसे समझ पाएगा कि ये उसका परिणाम कैसे कब कहां मिल जाएगा उसको। यानी कि उसका सारा प्लान उल्टा हो जाता है। तो ये जो कर्तव्य पर हम ज्यादा भार देना चाहते हैं तो भगवान इसके बारे में कहेंगे ग्यारहवें अध्याय के 55 के श्लोक में भगवान कहते हैं मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जित निर्वैरह सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये अर्जुन जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। कर्म करते भगवत प्राप्ति का साधन बताते, यानी कि कौन कर्म नहीं करता। अरे ब्रह्मचारी भी कर्म करता है, गृहस्थ तो कर्म करता ही है, वानप्रस्थ निवृत्त होकर फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है, घूमता फिरता रहे हैं, और सन्यासी भगवान तो कहते हैं कि उसका पेट पालन के लिए तो उसे अग्नि पिटाना क्या विकर्म करना पड़ता, जाएगा कहां तक भिक्खा मांगेगा। कलयुग में कोई दूध देता ही नहीं, तो कभी कभी सन्यासियों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे आमदनी आती रहे आती रहे। छुपा बिजनेस तो हम देखते हैं कि भगवान की प्रीति प्राप्त करने का साधन कर्म तो है ही, लेकिन किस ढंग का कर्म, कि मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। आप कहोगे अरे ब्रह्मचारी भी गाएगा, सभी कहेंगे जब कैसा ब्रह्मचारी है जो गुरु के हित में कर्म करना है उसका सर्वप्रथम धर्म होता है। कहते नहीं हाँ अभी नहीं गुरु महाराज, रा देखो मैं आ रहा हूं बाद में, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे ब्रह्मचारी का कर्म का अपने अपने कर्म का लिस्ट बन जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, कहीं ब्रह्मचारी का पंखा भी चाहिए थी ना। हाँ देखो संस्था में गड़बड़ी करती है तनखा लेने वाले ब्रह्मचारी, बारहवें अध्याय में भी पांचवें से लेकर बारहवें श्लोक तक ये देहधारियों के लिए बताया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्यात्मपरा अनन्येव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषां समर्थता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मया वीक्षित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। हम तो सोचते हैं सब बातें समझ में तो आती है लेकिन अपना एजेंडा ही कुछ अलग है, तो उतावली क्यों करते हो भगवान, शीघ्र हमें नहीं चाहिए, मैं बुरा हो जाऊंगा बाद में देखो, अभी तो मुझे अपना करने दो। हम ये सोचते हैं और भगवान कहते हैं कि नहीं मेरे लिए कर्म मन की भावनाओं के अनुसार होता है, लेकिन मन स्थिर न होने के कारण ये भावनाएं भी स्थिर नहीं होती। जब भावना स्थिर नहीं होती तो वो निश्चयात्मक भाव कैसे ला सकता है, निश्चयात्मक तो बनता है, यानी कि उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है। बच्चे लोग तो अपनी अपनी करियर बनाने में पड़े हैं, ये करियर कहां तक ले जाएगी उनको ये पता नहीं। वो समझ रहे हैं कि हम कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे तो हमारी करियर बन जाएगी, हमारी करियर बन जाएगी, वो करियर सिर्फ पेट तक ही पहुंचाने वाली है, इनको ये पता नहीं। यदि पेट पर नहीं पहुंचती तो पेट के विस्तारों पर भी पहुंचती है, जहां पेट की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है वो कैरियर देखो। बाकी पेट अपना विस्तार करके अन्य इंद्रियों को भी जा सकता है, तो पेट तक पहुंचाने वाली कैरियर दूसरा पेट देने में ही समर्थ है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठर यानी पेट। पुनः 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 तो ये कैरियर है या
कोई गोल चक्कर मारवाने वाला कैरियर, गोल गोल घूमते रहो, यानी कि कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। गोल गोल घूमने को कैरियर कहते हैं क्या? अपने पुराने जमाने में वो तेल निकालने वाली घानी होती है ना, कच्ची घानी का तेल पता है? वो घानी कौन चलाता था? देव। उसके आंख पर पटा मान देते थे, क्या आसपास साइड में देखे ना, उसको ऐसा बांधे और गोल गोल घुमाया करे। उसको तो समझ रहा है कि मैं आगे आगे जा रहा हूं, लेकिन गोल गोल घूमता है और घानी तेल पीसती रहती है, सही ना? यानी कि वो कैरियर है क्या? कैरियर तो निश्चित रूप से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाता है, निश्चित रूप से। तो गंतव्य स्थान होता है, जहां से शुरू किया वहां से फिर से आना, वो कैरियर का काम है। यानी कि जो कैरियर पेट के लिए ही, बिना पेट कैरियर जिसकी हो ही नहीं पाती, तो वो पेट घाची की घानी जैसा है। घाची किसे कहते हैं? जो तेल निकालने वाला होता है, और घानी जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे घानी कहते हैं। तो भौतिक पढ़ाई लिखाई जो जो हमें समझदारी देती है वो सिर्फ पेट तक पहुंचाती है, और पेट पर तो चींटी भी पहुंचती है। अपने यहां उनको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। और यूं देखें तो इन जीवों की संख्या मनुष्य की जीवों की संख्या से बहुत बहुत ज्यादा है, फिर भी हम घबराते हैं कि जब आबादी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? आबादी बढ़ती ही रहती है, व्यवस्था होती ही रहती है, वो समझ रहे कि हम सफल हैं। यूनाइटेड नेशंस बनाओ, मुफ्त खाना लाओ। अरे मुफ्त खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके ले जाने के लिए और लाने के लिए हमें अपना साधन भेजना पड़ता है, वो ही महंगा पड़ता है। बेहतर है हम अपने देश में ही पैदाश करें। इराक ने क्या कहा था कि आप आ जाओ, मुफ्त तेल ले जाओ, अपनी स्टीमर ले आओ और भर के ले जाओ, अपना बर्तन ले आओ और भर के ले जाओ। लेकिन बर्तन वहां ले जाना, लाना, भरवाना, इनका जो खाली करना, इसमें इतना खर्चा होता है तो तेल से भी ज्यादा खर्चा होता है। तो कि अपने देश में तेल पड़ा है उसे निकालो, बर्तन खाली बर्तन दूसरे की जगह ले जाने की आवश्यकता क्या? मुफ्त भी महंगा पड़ता। भगवान ने सारा दिया वो भी मुफ्त था, लेकिन अभी हमें महंगा पड़ रहा है क्योंकि हमने प्रदूषित कर दिया, उसे सफाई नहीं कर पाते, उसे सफाई नहीं कर पाते। चलो हवा देखो, हवा इतना प्रदूषित हमने कर दिया। जापान में तो लोग दुकान बनाने लगे और ऑक्सीजन का सिलेंडर अंदर डाल कर कहते कि हम यहां फ्रेश हवा देंगे, आप आओ 50 रुपया डालो, आधा घंटा हवा लेकर जाओ। बाजार में हवा बिछने लगे हैं, इतना प्रदूषण कर चुके हैं। पानी की तो बात ही क्या, देखो बिस्लरी पड़ी है और बिस्लरी दूसरा प्रदूषण कर रहा है, वो पता है क्या है? जितने क्षार इत्यादि जो होते हैं डिजोल्व में, वो निकालकर कहां डालते हैं? फिर से वही जगह पर। तो धरती बेकार बन जाती है, प्रदूषित बन जाती है, वो पैदाश छोड़ देती है। आप बंबई चपाटी मंदिर में जाओ, बाहर चौपाटी पर घूमने जाओ तो काला कीचड़, आपके गंदे पांव हो जाएंगे, कोई जाता ही नहीं।
सारा वो जो सुवेज है दरिया में डालते हैं, कच्चा सुवेज। मनुष्य अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारता है, यानी कि ये सब मुफ्त मिलता है, फिर भी हम मुफ्त पाने के लिए भी लायक नहीं है। ऐसी भावना, निश्चयात्मक भावना कैसे बन सकती है? लेकिन जब भगवान कहते कि माम योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अप्रदूषित भक्ति करता है, भगवान की भावना भी प्रदूषण वाली हो तो भगवान तो पाते ही नहीं, वो मिलते ही नहीं। हाँ, लेकिन ये भावना लेकर कि वो सारा प्रदूषण पहले हटाने की आवश्यकता होती है, तब भगवान की महत्ता पता चलता है। तो ये जब प्रदूषण होता है, जिसे हम चेतना का प्रदूषण कहते हैं, वो जब हटता है तो अव्यभिचारी भक्ति बन सकती है। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन जसेवते सगुणान सत्तीतान समतीतान, यानी कि वो उसका उल्लंघन करता है। किसके गुणों का, तीन गुणों का उल्लंघन करना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो तीन गुणों के परवशता में हमें जीना ही पड़ता है जबरदस्ती से। जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं वो तीनों गुणों को लांग सकता है। तो ये कर्म, कर्म हम किस भावना से करें, क्योंकि भगवान की शक्ति उधार लेते हैं, शक्ति उधार लेते हैं तो भगवान का फल में हिस्सा रहता ही है। वो हिस्सा नहीं देंगे तो कर्जा बन जाएगा। कर्जेदार कभी सुखी हो सकते हैं क्या? चिंता में मर जाएगा, कैसे वो कर्जा चुका। तो अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवान का कर्जा आसानी से छूटता है, तो मुक्त होने का उसे मौका मिलता है। सही, जो कर्जा चुका पाता है तो वो मुक्ति पाता है। आजकल तो आप सफल बनो अपना कार्य तो कर्जा करके बनो। बैंक सामने से लोन देती है, हम समझ रहे हैं कि चलो बैंक का ही तो कर्जा है ना, लिख दो इसके नाम पर गाड़ी, लेकिन हम गाड़ी का तो उपयोग करके मजा कर लेंगे। तो बैंक समझती है कि भैया तेरे पास जायदाद क्या है, गाड़ी का तो ये जो चुका पाएगा कि नहीं, उसके जो हफ्ते हैं तो चुका पाएगा कि नहीं, नहीं चुका पाता है तो चल तेरे पास कोई और जायदाद है लिख कर दे, यानी कि सारा लिखवा देंगे, कम से कम कोलेटरल तो लिखवा देंगे, यानी कि जितनी कीमत की गाड़ी है उतना उसके पास कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए मुफ्त। ऐसे तो मुफ्त हुआ ही नहीं। इस दुनिया में जो कोई मनुष्य मानता है कि सब मुफ्त है, काम करना भी मुफ्त नहीं है, भगवान की शक्ति उधार ली है तो कर्जा चढ़ेगा ही कड़ेगा। तो जिम्मेदारी बनी, जिम्मेदारी कहां से आती है? काम करने से। काम ही नहीं करे तो भगवान कहते हैं तू आया ही काम करने के लिए, तो फिर काम करना ही पड़ेगा। आलसी बनकर काम करने की भावना नहीं है तो पिटाई भी होगी। मुफ्त का कुछ नहीं इस दुनिया में, रोकड़ा हिसाब है रोकड़ा। तो इस ढंग से भगवान के मैं मालिक हूं, मेरे लिए कर्म कर, आसानी से सब कुछ हो जाएगा और मुक्त भी हो जाएगा। जब मेरे लिए कर्म करने से तुझे सारी जिंदगी मुफ्त में मिल जाती है, मैं भी मुफ्त में मिल जाऊंगा भगवान के, तुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो बहुत सारे भक्त आते हैं, हाँ हमने सुना है, हाँ हमने सुना है, चलो आ जाओ इस्कॉन में ज्वाइंट हो जाओ, सब मुफ्त मिल जाएगा। सही,
लेकिन यहाँ आते तो भक्त लोग रगड़ करते हैं, चलो बर्तन साफ करो, ये करो वो करो। हमने तो मुफ्त का सुना था, भगवान कहते हैं और आप नहीं करते हैं। कैसे भगत को आप लोग, भगवान कहते मैं सब मुफ्त में मिल जाऊंगा और आप उल्टा ही व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बेकार है, माया में है सब। अठारहवें अध्याय में भी भगवान ने कर्म के बारे में जो बात की है उसे समझने की आवश्यकता बनी रहती है। भगवान क्या कहते, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेण दुमिनाग्निर्वर्तता। प्रत्येक उद्योग यानी कि प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म हो, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। कर्म करने में मनुष्य अपने स्वभाव से ही कर्म करे वो हितावह होता है। दूसरों का स्वभाव अपनाकर हम कर्म करने की चेष्टा करते हैं जो अपने स्वभाव या गुणों में नहीं है तो भयानक होता है, भयानक होता है। ये कैसे, भगवान के भक्त भी कहते हैं अरे हम आसानी से पुजारी बन जाएंगे, देखो बस सब दौलत इत्यादि यहीं पड़ी है भगवान के लिए, चांदी कभी कभी सोने की भी चीज आती है, लेकिन यदि उसका शूद्र स्वभाव है तो कलयुग में मना किया है कि ज्यादातर शूद्र स्वभाव वाले भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका गुण वृत्ति इत्यादि बीच में पट गए। वैष्णव तो है लेकिन गुणों से ऊपर उठना वैष्णव का सर्वप्रथम धर्म होता है, क्योंकि लक्ष्य है अव्यभिचारिणी भक्ति। तो चाहे गेरुआ भी क्यों न पहना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी परेशानी खड़ा कर देता है। चंडीगढ़ मंदिर में जब हम आए थे 1997 की बात है, ऐसी घटना हुई थी, तो जो स्वभाव के अनुसार होता है वो कर्म करना होता है कि सात्विक भाव वाले भगवान की पूजा करें, राजसिक और तामसिक भाव वहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भगवान का गर्भगृह जो है वहां इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुणों का प्रभाव पर ये सवार होकर वहां तो अध्यात्म का भाव बनना चाहिए, तो सात्विक भाव से हम अध्यात्म में पहुंच सकते हैं। तामसिक और राजसिक वृत्तियां हटाने के लिए वहां इन व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, पाबंदी डालनी पड़ती। तो झूठ मूठ कर यदि कोई ऐसा उपद्रव कर सकता है, अपने वृंदावन मंदिर में भी, बाहर के मंदिर में तो कितना होता है, वहां कोई देखने वाला भी नहीं है, वहां तो होता ही रहता है, लेकिन हम यहां प्रशिक्षित करने के लिए ये संस्था बनाई है, जिसके द्वारा सचमुच अपने अपना लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति का वो सिद्ध हो। वैष्णवों का अनादर नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए जो जिनका स्वभाव के अनुसार वृत्तिक परक व्यवसाय होता है वो करने की छूट देते हैं, लेकिन भगवान के साथ जो अध्यात्म का व्यवहार होना चाहिए वो तो यहां बहुत आवश्यक बनता रहता है। इस कौन में प्रशिक्षण महत्व का सबसे ज्यादा है, उसके अनुसार ट्रेनिंग भी महत्व।
तो इस ढंग से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इन बातों पर, जहां कर्म और कर्म जिन गुणों के प्रभाव के अनुसार होता है, उसके लिए सारे समाज, मनुष्य समाज का विभाजन करते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि, उसका कर्ता होने के बावजूद भी विद्धि तो ये जान और कर्तारम मुझे, मैं कर्ता नहीं ऐसे तू जान, और मुझे ये कर्म छूता नहीं, न तो मैं तीनों गुणों का दास हूं, मैं गुणातीत हूं, गुणों मेरे वश में है। यदि कोई भगवान बनने का दावा करता है तो उसको ये देखना कि कौन से गुण के वश में है, कौन से गुण से वश में, सात्विक राजसिक या तामसिक गुण से। ये बहुत आसानी वाला तरीका है कि इसके इस पर कौन से गुण का प्रभाव है। गुणों से छुटा है, गुणों से छुटा है तो मुक्त होता है, फिर भी भगवान नहीं बन सकता, वो तो अलग बात है, लेकिन पहले तो ये बताओ गुणों से छुटा है। कोई यदि दिखावा करता है गुणों से छुटा नहीं है, फिर भी दिखावा करता है कि हम गुणों के छुटे हैं, बाद में उसको कहना कि चल ये छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा के बता, क्या तू ये कर सकता है, कर्म है ना। भगवान कहते हैं कि ये गुणों के प्रभाव में जो जो है उनको कर्म छूता है और कर्म बंधन करता है, उससे नहीं छूट पाता, तो उंगली से ये छोटा गिरिराज शिला भी उठाने के लिए समर्थ नहीं, एक शिला भी छोटी अपनी उंगली पर उठाने के लिए समर्थ नहीं, तो गोवर्धन पर्वत कैसे उठाए। जब भगवान स्वयं गुणातीत कहलाते हैं, नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतियो माम अभी जानाति कर्मभिर अपि न बध्यते। भगवान कहते कि मुझे कर्म छूते ही नहीं, कि मेरे कार्यकलाप सारे दिव्य होते हैं, इसलिए कर्म छूते नहीं, कर्म के फल में मुझे आसक्ति भी नहीं, ऐसा छूटना। कर्म करते रहो, जैसे सामान्य मनुष्य की तरह भांति कर्म करते, लेकिन वो कर्म है ही कहां, जब छूते ही नहीं, न तो फल की आकांक्षा भी रखते हैं, हम तो बैठे बैठे न करें फल की आकांक्षा रखते हैं, देखो उल्टा धंधा, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं लेकिन फल की आकांक्षा रहती है, अरे भैया सबको मिलता है तो हमें भी देते हैं। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग टूथब्रश साबुन ये सब के लिए झगड़ते, मेंटेनेंस काफी हल्ला गुल्ला भी करते हैं, अरे भाई हम तो कर्माणि लिंपन्ति, ये तो कर्म फले स्पृहा तो है ही, जब ये है, जब तक कर्म करते हैं तो उनका ऋण बंध जाता है, कर्म करने की भावना भी ऋणानुमुक्ति नहीं, ऋण में डाल देगी, मुक्त नहीं करेगी, कर्म करूंगा तो गया काम से, ऐसी भावना ही हमें ऐसे मन वचन और कर्म में प्रकट कराती है। तो इसी ढंग से हम ये वर्णाश्रम का विभाजन, चार वर्ण और चार आश्रम गुण और कर्म के विभाग से बने हैं, इन का परिचय करते हैं। कल आप में से कौन कौन होंगे यहां इस समय? बस छह सात व्यक्ति इस तरफ, एक दो तीन चार पांच छह। तो हम आगे बढ़ेंगे। चार आश्रमों की व्यवस्था जो है उनकी विशिष्टता वाले कर्म, और ये कर्म भगवान को समर्पित करने से हमें क्या सिद्ध होता है वो देखना है। चार चार वर्ण और चार चार आश्रमों की व्यवस्था में स्वभावगत कर्म की बात की है, जो भागवत का मूल सिद्धांत बनता है। भागवत का मूल सिद्धांत बनता है। भगवत गीता में तो अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के लिए लड़ना उसका स्वधर्म बताया, लेकिन ये लड़ना भी भगवान की प्रीति के लिए लड़ना है, इसीलिए वो कर्म नहीं भक्ति भक्ति बन जाती है। तो कोई वैश्य शूद्र और ब्राह्मण तो सोच में पड़ जाता है कि ये तो अर्जुन के लिए कही है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत में उसकी पुष्टि हो गई। भगवान कहते हैं कि कोई भी आ सकता है इनके पास, जो ये चार वर्ण में स्थिर नहीं है, लेकिन इन वर्णों के आश्रित जो जो है, जिसे व्यपाश्रित कहते हैं, व्यपाश्रित यानी इन वर्णों पर जो निपता है, उनके कर्तव्य वे भगवान की तरफदारी वाला हो तो वो भी आ सकते हैं, भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में वो बता तो दिया है, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं होती। कभी कभी ये जब श्लोक बोलते हैं कि मां विपाश्रित्य येषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा याति परम गति। स्त्री वैश्य शूद्र ये सभी आश्रित माने जाते हैं। जो आश्रित हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आश्रित है। कर्म तो उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कर्म उनको आश्रय देता है, उन लोगों को सुरक्षितता कर्म करने में चाहिए। वो लोग यदि आश्रय छोड़कर कर्म करने जाते हैं तो इनका इनकी कोई सुरक्षा का साधन नहीं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, चाहे एक स्त्री भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, एक स्त्री भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा का प्रबंध होना ही चाहिए। तो कल देखेंगे इन पर भगवान की क्या, क्योंकि कर्म है लेकिन व्यपाश्रित्य, इसलिए ये देखना हमें समझने की आवश्यकता। इसमें सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। आज के कोई प्रश्न हो तो कर देना है कोई। अव्यभिचारिणी, व्यभिचार यानी एब्यूज, अव्यभिचारिणी जिसमें किसी भी प्रकार का एब्यूज नहीं। सजागता से भगवान की शक्ति है, इसलिए उनकी सेवा में वो जानी चाहिए, वो सर्वप्रथम है। यदि कहें कि मेरी सेवा में जानी चाहिए नहीं दूसरों की सेवा में जानी, तो वो व्यभिचारी भाव कहलाता है। जो उपयोग होना चाहिए उसके बजाय अन्यथा होता है तो वो ठीक नहीं। अरे देवता यहाँ आने से डरते हैं तो होगा क्या? जो होगा तो ऊपर से होता है। इस कलयुग में देवता अपना शेयर ग्रहण करने भी नहीं है, क्योंकि वो भी यज्ञ का शेयर भी कोई नहीं करता, यज्ञ करना जानते ही नहीं, तो कैसे शेयर लेने आएंगे, इनका भाग लेने नहीं आएंगे। और कलयुग में तो इतना दूषण होता है, आज चलो आप यज्ञ करो, घी ले आओ और डारो अग्नि में, होम करो, वो शुद्ध घी है, वो देखने जाओ तो पता चलेगा कि अरे ये तो घी के अलावा कुछ और ही है, चर्बी होती है जो सिर्फ धुआं करती है, जलती नहीं। ऐसा घी डालने से धुआं नहीं, जो अग्नि जितनी है वो भी बुझ जाएगी। अब देखो, अब व्यभिचारिणी है तो देवता घबराते हैं, इस कलयुग में नहीं आएंगे, कुल्लू मनाली में भी नहीं आते, लोग जाते हैं और वहां वो लोग बातें कर लेते हैं छिपके से, वो लोगों को समझा कि हम देवताओं से मिलकर आए हैं, इन्होंने ये आदेश दिया है कि ये हेनरी फोर्ड अपने अमृतदास ने जो प्रस्ताव रखा था कि यहां स्की रिजोर्ट बनेगा, नहीं बनेगा, सही अखबार में तो यही आया था। वहां हिमाचल प्रदेश देवताओं की पूजा में बहुत मानते हैं, लेकिन देवता घबराते हैं कि ये कलयुग की इन्फ्लुएंस हो रही है, मारो गोली, यहां नहीं जाना। तो नगर के लोग ही देवता का स्वरूप धारण करके जाते हैं, तो ये प्रथा बन गई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।